अयांश हॉल में इधर उधर चलते हुए किसी से फोन पर बात कर रहा था। तभी विनीत के साथ डॉक्टर आ गए। अयांश ने फोन रखकर डॉक्टर की ओर आते ही डॉक्टर ने कहा, हेलो मिस्टर मेहरा। अयांश ने सिर हिलाकर हाँ में उत्तर दिया। डॉक्टर मुस्कुराते हुए बोले, आज मैं आपकी वाइफ के सिर की ड्रेसिंग करने नहीं आया हूँ, बल्कि डॉक्टर और दवाइयों से उन्हें छुट्टी देने आया हूँ। विनीत मुस्कुराते हुए बोले, फिर तो आरवी भाभी बहुत खुश हो जाएंगी, है ना अयांश। ये सुनकर अयांश ने उसे घूरा। विनीत डॉक्टर को लेकर ऊपर चला गया। दिनकर जी, राधे और नर्स वहां मौजूद थे। आरवी चुपचाप बेड से सटकर बैठी थी और दिनकर जी उससे बात करने की कोशिश में लगे थे, पर उनकी कोई कोशिश कामयाब नहीं हो रही थी। ना आरवी ने कुछ कहा और ना ही अयांश ने पूछने पर कुछ बताया। विनीत डॉक्टर के साथ कमरे में आते हुए बोला, क्या बात है, सब एक साथ एक ही कमरे में? हाय आरवी भाभी, सॉरी दो दिन से किसी काम से बाहर था इसलिए मिलने नहीं आ सका। कैसी हैं आप? आरवी ने विनीत की ओर देखा और फिर अपनी नज़रें झुका लीं। ये देखकर दिनकर जी अपना सिर पकड़ लेते हैं। आरवी का ऐसा सूखा जवाब देख विनीत हैरान हुआ और पास खड़े राधे से बोला, ये इतनी म्यूट क्यों है, सब ठीक तो है ना? विनीत बाबा, कुछ पता नहीं, मुझे भी कुछ नहीं पता, पर ये दो दिन से ऐसी ही है, राधे धीरे से बोला। विनीत हैरानी से बोला, मतलब? तो राधे ने सब कुछ बताया और कहा, मालिक तक के साथ बात नहीं कर रही है, एकदम चुप, ऐसा लग रहा है किसी ने इनकी आवाज़ छीन ली हो। तभी वहां अयांश आ गया और विनीत के साथ सबने अयांश की ओर देखा। दिनकर जी वहां से उठकर चले गए। मालिक के कहने पर राधे भी उनके पीछे चला गया। डॉक्टर ने नर्स से इशारे से पूछा, सब ठीक है? तो नर्स ने सिर हिलाकर ना में जवाब दिया। डॉक्टर आरवी के पास आकर बोले, हेलो मिसेज मेहरा। पर आरवी ने कुछ नहीं बोला। डॉक्टर ने आरवी की आंखें देखकर चेकअप किया और मुस्कुराते हुए बोले, नाउ फील बेटर? आरवी ने सिर हिलाकर हाँ में उत्तर दिया। तभी डॉक्टर ने आरवी के सिर की पट्टी खोली और माथे की खरोच पर बैंडेज लगाते हुए बोले, लीजिए मिसेज मेहरा, अब आपको हमारी ज़रूरत नहीं, जल्द ये चोट पूरी तरह ठीक हो जाएगी, अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, फिर भी कुछ हो तो एक कॉल में हाजिर मिलूंगा। आरवी ने सिर हिलाकर हाँ में उत्तर दिया। डॉक्टर हैरानी से बोले, आज नहीं पूछेंगे आप दवाइयाँ कब तक लेनी होंगी? आरवी डॉक्टर की ओर देखते हुए बोली, अगर लेना ज़रूरी है तो ले लेंगे, नहीं ज़रूरत तो रहने देंगे। डॉक्टर बोले, नहीं ज़रूरत, फिर भी तकलीफ हो इस चोट से तो एक दवाई ले लेना, बाकी आप बहुत स्ट्रांग हैं तो अब आपको दवाई की ज़रूरत नहीं है, बस ख्याल रखें अपना। आरवी ने सिर हिलाकर हाँ में उत्तर दिया। डॉक्टर बोले, क्या हुआ आपको? मैंने सुना है कि आप चुप रहने लगी हैं, कहीं कोई परेशानी तो नहीं? नर्स बोली, हाँ कोई प्रॉब्लम है तो बता दीजिए ना, देखिए आपको लेकर सब परेशान हैं, डॉक्टर भी हैं यहाँ, क्या पता सोल्यूशन मिल जाए, प्लीज़ बोलिए ना। ये सुनकर आरवी ने सिर हिलाकर ना में उत्तर दिया और सबकी ओर देखते हुए बोली, हमें रेस्ट करना है। इतना सुनकर सबने एक दूसरे की ओर देखा। डॉक्टर ने सबको बाहर चलने का इशारा किया और सब बाहर चले गए। सबके जाते ही आरवी कंबल ओढ़कर सो गई। कमरे के बाहर जाते हुए डॉक्टर ने नर्स से पूछा, बताया चुप रहने की वजह? नर्स ने सिर हिलाकर ना में उत्तर दिया। डॉक्टर बोले, बात करने की कोशिश की? नर्स बोली, हाँ सबने की डॉक्टर, पर कोई फायदा नहीं, सबकी हर बात का ज्यादा से ज्यादा जवाब बस हाँ ना में देती है या बस सिर हिला देती है, जबकि ये ऐसी बिल्कुल नहीं है। तभी विनीत बोला, डॉक्टर कहीं ऐसा तो नहीं कि सिर में लगी चोट की वजह से तब पता ना चला हो कहीं अंदर कोई इंजरी हुई हो जिसका अब असर दिख रहा है? दिमाग पर तो चोट नहीं लग गई? सिस्टर सही बोल रही है, वो ऐसी बिल्कुल नहीं है, गुमसुम सी रहने वाली परेशान होते हुए। नो नो, ऐसा कुछ नहीं है विनीत, सब ठीक है, रिपोर्ट नॉर्मल है, ऐसा कोई इश्यू नहीं है, दिमाग पर तो नहीं बट आई थिंक मन पर चोट लगी है इनके, अक्सर मन में कोई बात बैठने पर भी इंसान खामोश हो जाता है, कुछ हुआ है ऐसा? डॉक्टर ने पूछा तो सब पीछे खड़े अयांश की ओर देखने लगे। अयांश फट से बोला, वॉट? और चुप ही ना अच्छा ही है, दो चार दिन में बोलने लगेगी, ज्यादा चुप वो वैसे भी नहीं रह सकती, डॉक्टर आपका काम हो चुका है, विनीत फेस दे दो। इतना कहकर अयांश अपने कमरे में चला गया। विनीत डॉक्टर से बोला, डोंट वरी डॉक्टर, हम ख्याल रखेंगे और मैं पता लगाता हूँ बात क्या है, आइए नीचे चलते हैं। तभी नर्स बोली, मैं एक बार मैम से मिलाऊं। इतना कहकर वो आरवी के कमरे में चली गई और विनीत डॉक्टर नीचे चले गए। अयांश आरवी के बारे में सोचते हुए अपने कमरे में इधर उधर चल रहा था। ये ऐसा क्यों कर रही है, क्यों चुप रहती है इतनी, कुछ भी कहूँ तो भी जवाब नहीं देती, उल्टा ना बहस करती, कहीं सक्षम का वो सच, वो तस्वीर वाला मैंने दिखाया उसे, उसका तो असर तो नहीं, वो बात तो मन पर लग गई इसके, उस वजह से तो परेशान नहीं रहने लगी है, पता नहीं था इसे इसके साथ क्या हुआ है और वो जानकर बुरा फील हो रहा होगा आई थिंक, उस रात के बाद खामोशी है ये, पर ये ऐसे चुप नहीं रह सकती, सबको परेशान करके रखा है, मैं भी देखता हूँ आज कैसे बात नहीं करती। कहते हुए अयांश आरवी के कमरे में चला गया। कमरे में जाते ही अयांश ने आरवी को आवाज़ दी, आरवी? पर आरवी ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, वो वैसे ही कंबल ओढ़े बिस्तर पर लेटी रही। ये देखकर अयांश को गुस्सा आ गया, उसने कंबल आरवी के ऊपर से हटाकर दूसरी तरफ फेंक दिया। मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। पर आरवी तब भी नहीं बोली, अपनी बाहें अपने चेहरे पर रखकर लेटी रही। खुद को इग्नोर होते देख अयांश का गुस्सा बढ़ गया। अयांश बेड पर बैठा और आरवी को कंधों से पकड़कर बिठाते हुए बोला, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, सुन रही है ना तुम, कौन सा नया प्लान बनाया है अब तुमने और कौन सा खेल खेल रही हो तुम, दांत पीसते हुए। आरवी तब भी चुप रही तो अयांश फिर चिल्लाया, सबको इग्नोर कर सकती हो, मुझे नहीं। प्रॉब्लम क्या है? आरवी फिर भी कुछ नहीं बोली तो अयांश ने उसे झटकाकर छोड़ दिया और टेबल पर रखा पानी का ग्लास उठाकर एक ही झटके में आरवी के मुंह पर दे मारा। होश में आओ। एक्चुअली ये चिल्लाना, आरवी को सुनाना, मुंह पर पानी मारना, अयांश आरवी की चुप्पी तोड़ने के लिए कर रहा था। अयांश का गुस्सा तो लाजमी ही था उस वक्त, और ये सब करना बेअसर रहा आरवी पर। आरवी ही तब भी कुछ नहीं कहा, बल्कि चुपचाप अपनी हथेली से चेहरा साफ किया और उठकर वॉशरूम की तरफ जाने लगी तो अयांश गुस्से से तिलमिला उठा। उसने उसकी कलाई पकड़ उसे अपने करीब खींच लिया। क्या करने की कोशिश कर रही हो, बोलो। कुछ भी तो नहीं। आपको मेरा बोलना पसंद नहीं तो बस चुप हूँ। आपको नफरत करनी है मुझसे तो नफरत कीजिए, मैं यही हूँ, कहीं नहीं जा रही। आरवी हल्का सा मुस्कुराते हुए अयांश की ओर देखते हुए कहती है। ये देख अयांश और चिढ़ गया और आरवी को अपने और करीब करते हुए बोला, कुछ नई प्लानिंग है तुम्हारी, घूरते हुए। नहीं तो, मैं सब एक्सेप्ट कर चुकी हूँ। आपने ही कहा था ना आदत डाल लो, वही डाल रही हूँ। आप जो कहें मान रही हूँ, जो बोल रहे हैं सुन रही हूँ, चुप रह रही हूँ। कोई तमाशा, कोई गड़बड़, कोई बहस नहीं कर रही हूँ। आपको परेशान भी नहीं कर रही, फिर आप गुस्सा क्यों हैं? सब आपकी मर्जी का, जैसे आप चाहते हैं हो रहा है ना। आप क्यों परेशान नाराज हो रहे हैं अब? बोलूं तो रोकते हो, चुप रहूं तो टोकते हो, आरवी ने मासूमियत से कहा। तभी आरवी को छोड़ते हुए अयांश बोला, जो भी कर रही हो बंद करो, जो तुम बन रही हो वो तुम नहीं हो सकती। क्या फर्क पड़ता है, जो मैं हूँ वो आपको पसंद तो नहीं? ओह, अब समझ आया आप गुस्सा क्यों है। सॉरी, दिमाग से निकल गया, पर अब नहीं भूलूंगी। वेट, कहते हुए आरवी आईने की ओर आई और गले में मंगलसूत्र डालकर अपनी मांग में सिंदूर भरते हुए बोली, लीजिए, ये भी कर लिया मैंने, ये हमेशा करूंगी, जो आप चाहें सब करूंगी।
ये देख अयांश उसके पास आया और अपनी तरफ घुमाते हुए बोला, दिमाग में तुम्हारे चल क्या रहा है? आरवी बोली, कुछ भी तो। तभी अयांश ने उसे बाहों से कसकर पकड़ा और जोर से चिल्लाया, बोलो। आरवी सिसकी भरती अपनी आंखें मीच लेती है। अयांश के चिल्लाने की आवाज़ नीचे तक पहुंची तो मैं देखता हूँ दादू कहते हुए विनीत भागा भागा ऊपर आरवी के कमरे में आया और दोनों की तरफ हैरानी से बोला, क्या चल रहा है यहाँ? अयांश ने आरवी को छोड़ दिया और पेट करके गुस्से से अपनी मुट्ठियाँ बांधकर खड़ा हो गया। आरवी अपने हाथों से अपनी बाहें सहलाने लगी। विनीत आरवी की ओर देखते हुए बोला, बात क्या है, कोई बताएगा मुझे? आरवी, दादू और राधे ने बताया मुझे कि तुम बधर चुकी हो, हर वक्त चुप रहती हो, क्यों, कुछ हुआ है क्या, कोई परेशानी? नहीं, कहते हुए आरवी ने सिर हिलाकर ना में उत्तर दिया। फिर क्या प्रॉब्लम है आरवी, अचानक चुप क्यों रहने लगी? इतना तो मैं भी जानता हूँ कि कुछ तो हुआ है, वरना तुम चुप रहने वालों में से नहीं। अयांश ये कुछ कहा क्या? विनीत ने फिर सवाल किया। तभी आरवी फट से बोली, हाँ। विनीत बोला, क्या? ये सुनकर अयांश भी मुड़कर आरवी की ओर देखने लगा तो आरवी से देखते हुए बोली, इन्होंने मुझसे कहा? विनीत बोला, चुप रहने को कहा क्या इसने? तभी अयांश हल्का सा मुस्कुराते हुए बोला, ये और मेरे कहने से चुप हो जाए, सवाल ही पैदा नहीं होता। माना सत्यवादी नहीं हो तुम, पर कम से कम अपनी खामोशी की वजह तो बता ही सकती हो, या मेरे दादू को परेशान करने में मज़ा आ रहा है तुम्हें? अगर ऐसा है तो सज़ा पाने को भी तैयार रहना, छोड़ने नहीं वाला तुम्हें। तभी विनीत अयांश से बोला, तुम चुप रहो, मैं बात कर रहा हूँ ना, बता तो रही है। बोलो आरवी, क्या बात है? अयांश ने बोला चुप रहने को। नहीं, वैसे चुप रहना अच्छा है विनीत, बोलकर कोई फ़ायदा नहीं, इनको मुझसे नफ़रत करनी है तो अच्छे से करने देते हैं ना। मतलब? विनीत ने दोनों की ओर देखते हुए कहा। मतलब इनकी नफ़रत की वजह ये मुझे बता चुके हैं, तो बस इनको नफ़रत करने दे रही हूँ खुद से। नफ़रत की वजह बताई इसने? अयांश ने बता दिया क्यों नफ़रत करता है तुमसे, क्या वजह है? आपको नहीं पता, आपको जाननी है? हाँ जाननी है मुझे। क्या दादू, राधे, सबको जानना है कि ऐसा क्या है जो ये तुमसे नफ़रत करता है? ये तो नहीं बताएगा, पर अब तुम जान चुकी हो, बताओ मुझे आरवी। मैं सक्षम के साथ मिली हुई थी विनीत, मैंने ही कहा था उसे कि मुझे बहुत सारे पैसे चाहिए सक्षम, तुम पैसे दो मैं तुम्हारी हो जाऊंगी, जो तुम चाहो वो तुमको दूंगी, अपना प्यार, अपना सब कुछ। मैंने ही सक्षम को धोखा देने को कहा था मिस्टर मेहरा को, आरवी अयांश की तरफ देखते हुए बोली। ये सुनते ही विनीत की आंखें फैल गईं, वो आरवी के पास आया और चिल्लाते हुए बोला, क्या, तुम शामिल थीं? तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? अब तो कर चुकी विनीत, मैं और सक्षम दोनों साथ थे उस धोखे में, हमारा ही प्लान था सब कुछ छीनने का, मिस्टर मेहरा का बर्बाद कर सब अपने नाम करने का। आरवी ने जैसे ही ये कहा तो विनीत को गुस्सा आ गया, वो उसे कंधे से पकड़कर बोला, कैसे किया तुमने ऐसा, हिम्मत कैसे हुई उस सक्षम वाले के साथ मिलकर हमें धोखा देने की, हमारे साथ ऐसा घटिया खेल खेलने की? आरवी विनीत की ओर देखते हुए बोली, पैसों से मुझे और सक्षम दोनों को प्यार था विनीत, पर अफसोस हमारा सच पहले ही इनके सामने आ गया, अयांश की ओर देखते हुए, और मिस्टर मेहरा की नफरत की वजह बन गए हम। मुझे नहीं पता था आरवी तुम ऐसा कर सकती हो। मुझे तो लगा था कि तुम गलत नहीं हो सकती हो, किसी के साथ गलत नहीं कर सकती। अयांश की नफरत की वजह कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, वक्त आने पर सब सही हो जाएगा तुम दोनों के बीच। पर तुम्हारी असलियत ये है, सोचा नहीं था। तुमने भी धोखा दिया, शर्म नहीं आई तुम्हें? गुस्से से चिल्लाते हुए। शर्म क्यों आनी थी विनीत, एनीवे गुनाह किया है मैंने और सजा के तौर पर मिल रही है इनकी नफरत, आरवी अयांश की तरफ देखते हुए बोली। ये सुनकर विनीत ने आरवी को झटका कर छोड़ दिया। तुम इतनी गिरी हुई हो, काश पता होता। आरवी पीछे की तरफ गिरती की फट से अयांश ने कमर से पकड़कर संभाल लिया और आरवी को खड़ा कर विनीत के गाल पर अयांश ने एक थप्पड़ मारा। क्या बोल रहा है और धक्का क्यों दिया? विनीत आरवी की ओर घूरते हुए बोला, सच बोल रहा हूँ, मैंने तो धक्का दिया पर इसने धोखा दिया है। गिर जाने देता जिसकी सोच इतनी गिरी हुई है। पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं ऐसे लोग। तू इससे नफरत करता है? करनी भी चाहिए, नफरत के ही लायक है। अयांश, सक्षम के जैसे इसे भी जेल में डाल दे, मैं तो सोच भी नहीं सकता ये सक्षम के साथ मिली हुई थी। तभी अयांश ने विनीत का कॉलर पकड़ लिया। मुंह बंद रख अपना। विनीत अयांश की कलाई पकड़ते हुए बोला, क्यों रखूं, इसने उस सक्षम का साथ दिया, तू मुझ पर क्यों गुस्सा कर रहा है? उस पर कर, वो सक्षम के साथ मिली हुई थी। हाँ मिली हुई थी, वजह अब आपने भी जान ली विनीत, आप भी कर सकते हैं मुझसे नफरत, आरवी बोली। विनीत बोला, नफरत ही होगी और क्या होगी तुमसे, तुमने काम ही ऐसा किया है। तभी अयांश दोनों पर अपनी उंगली दिखाते हुए चिल्लाया, चुप, बिल्कुल चुप, नहीं मिली हुई थी ये सक्षम के साथ। जो उसने धोखा दिया मुझे उसमें वो अकेले शामिल था, आरवी उस बारे में कुछ नहीं जानती थी और ना ही ये वजह है मेरी नफरत की, सुना तुम दोनों ने? तभी आरवी बोली, पर आपने ही तो कहा था मैं सक्षम के साथ मिली हुई थी। अयांश बोला, हाँ कहा था, यूं ही कहा था ताकि तुम मुझसे सवाल करना बंद कर दो। मेरी सक्षम की दोस्ती को लेकर तुम्हारा क्या सोचना था ये मैं पहले ही जानता था, क्योंकि मैंने कई बार नोटिस किया था कि तुम हमेशा मेरी सक्षम की दोस्ती की तारीफ करती थी, सक्षम से कहती थी ये दोस्ती हमेशा बनी रहे, हम साथ रहें, अच्छे लगते हैं साथ में दोनों दोस्त, बहुत प्यारी दोस्ती है, सुना था मैंने तुम्हें सक्षम से बात करते हुए। तुम्हारे सवालों से तुम्हारा ध्यान हटाने के लिए मैंने तुम्हारा ध्यान इस ओर लाना चाहा और कह दिया कि तुम सक्षम से मिली हुई थी, ताकि तुम मुझसे वजह पूछना बंद कर दो और ये साबित करने में लगे कि तुम सक्षम के साथ नहीं मिली थी, आरवी बोली। ओ, अयांश चिल्लाते हुए बोला, हाँ पर ना जाने तुम्हें इतने तमाशे करने की आदत क्यों है, जो मौन धारण करके बैठ गई, जैसे बगावत करनी तो आती ही नहीं। हकीकत तो ये है कि तुम चुप बैठ ही नहीं सकती, शक है मुझे पूरा तुम पर कि जरूर कोई नई खिचड़ी पकाई है तुमने। तभी विनीत बोला, शक छोड़ो, वजह बताओ अयांश, अगर ये सक्षम के साथ मिली थी ये वजह नहीं है तो फिर क्या वजह है नफरत की, किया क्या है इसने? आरवी बोली, लगा दीजिए मिस्टर मेहरा नया झूठा इल्जाम, सच में आपकी नफरत की कोई वजह है? मुझे तो नहीं लगता। तभी अयांश का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच चुका था। वो विनीत की ओर देखते हुए बोला, वजह जाननी है तुम्हें? हाँ जाननी है, विनीत बोला। हाँ तभी चैन आएगा तुम्हें और ये अपना मौन धारण छोड़ेगी, वजह बताता हूँ आज मैं तुम दोनों को, अयांश दोनों की ओर देखते हुए बोला। तो विनीत बोला, बोलो। हाँ बताओ। आरवी अयांश की ओर देख रही थी, तभी अयांश उसकी बांह पकड़कर बोला, वजह जाननी है? चलो तुम्हें मेरी नफरत की वजह बताता ही नहीं, आज दिखाता भी हूँ कि क्यों मैं तुमसे इतनी नफरत करता हूँ। दोनों कब से मर रहे हो ना नफरत की वजह जानने के लिए, आज मिलवाता हूँ उस वजह से। कहते हुए अयांश दोनों का हाथ पकड़े और वहां से ले गया। जाते जाते विनीत और आरवी दोनों ने एक दूसरे की ओर देखते हुए पलके झपकाई और अयांश के साथ तेजी से चल पड़े। क्रमशः